अरुणिमा जब मिश्री को देखती है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से मिश्री को गले लगा लेती है। ज्योति और रजत भी अरुणिमा से मिलते हैं। तभी वहां पर राजा साहब की आवाज़ आती है। क्या बात है मिश्री, अपनी दीदी से ही मिलोगी, हमसे नहीं मिलना चाहोगी? सब लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, सामने से आस्तिक आ रहा था। आस्तिक को देखकर सब लोग सीधे हो जाते हैं और मिश्री एक छोटी सी मुस्कान लिए कहती है, नमस्ते राजा साहब। आस्तिक उन सब के पास आता है और मिश्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने राजा साहब? अरे हमें तो लगा तुम हमें जीजा सा कह के बुलाओगी, अपनी दीदी से मिलते हुए तो बहुत कूद रही थी, अब जीजा सा से इस तरीके से मिलोगी, इतना फीका फीका। भाई हमने तो सुना था आप बहुत शरारती हैं, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सुना था वो गलत है। मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है जीजा सा, लेकिन आप तो हमारे राजा हैं ना, हम आपके साथ शरारत कैसे कर सकते हैं? आस्तिक ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर हम यहाँ के राजा हैं तो आपकी जीजा सा भी तो हैं। अगर हम राजा होने का फ़र्ज़ निभा सकते हैं तो क्या आप हमारी साली होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकती हैं? मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी बात है जीजा सा, तो फिर ठीक है, अगली बार जब हम आपसे मिलने आएंगे ना तो खूब हंसी मजाक करेंगे। आस्तिक ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हमें इंतज़ार रहेगा। फिर आस्तिक ने शारदा जी को देखा जिनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, और आस्तिक के चेहरे पर इस भाव को देखकर सुकून। आस्तिक को पता था कि अरुणिमा शारदा जी को अपने मन की बात कहने के लिए मरी जा रही थी, इसीलिए उसने अरुणिमा का काम आसान करते हुए कहा, रानी साहिबा आप अपनी माँ को हमारा कमरा क्यों नहीं दिखाती हैं? अरुणिमा एक पल के लिए चौंक जाती है और आस्तिक को देखने लगती है, तो आस्तिक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ जाइए अपनी माँ को हमारा कमरा दिखाइए। शारदा जी भी अरुणिमा का हाथ थामती है और कहती हैं, हाँ बेटा चलो ना तुम्हारा कमरा देखते हैं। अरुणिमा शारदा जी को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पृथ्वी रजत और ज्योति को लेकर महल दिखाने के लिए चला गया था और मिश्री बाहर गार्डन में कीर्ति के साथ थी, पर आस्तिक किसी गहरी सोच में था। कुछ घंटी बाद पार्टी शुरू होने वाली थी और आस्तिक शायद कुछ बड़ा सोच रहा था। दूसरी तरफ अरुणिमा के कमरे में अरुणिमा अपनी माँ के पास आती है और उनको गले लगाते हुए रोने लगती है। उसे इस तरीके से रोते देख शारदा जी कहती हैं, अरु क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अरुणिमा अपनी माँ से अलग होती है और रोते हुए कहती है, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शारदा जी अरुणिमा की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। एक तो वैसे ही उनका बिजनेस उनके हाथ से निकल गया था और अब अरुणिमा की ये बात उनके दिल में खंजर का काम कर रही थी। उन्होंने अपने हाथों से अरुणिमा के आंसू पोंछे और उसे समझाते हुए कहा, नहीं अरु ऐसा नहीं कहते हैं, बेटा नई नई शादी हुई है तुम्हारी, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, हर लड़की को लगता है, पर हर लड़की इस तरीके से अपना ससुराल छोड़कर मायके थोड़ी न चली जाती है। लेकिन अरुणिमा ने रोते हुए कहा, नहीं बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और है, आपको नहीं पता राजा साहब मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और उसके बाद अरुणिमा ने अपनी माँ से हर एक बात शेयर की जो भी उसके साथ शादी से लेकर अब तक हुआ था, वो हर एक बात अरुणिमा ने अपनी माँ को बता दिया था। शारदा जी ये सब सुनकर हैरान रह जाती हैं, तो अरुणिमा लोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। शारदा जी ने अरुणिमा के आंसू पूछे और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं अरु ऐसा नहीं कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन अब मेरी कुछ अलग मजबूरियाँ हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस अब हमारी नहीं रही, ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ, मैं कैसे तुम्हें संभालूंगी, और तुम्हारा खर्चा वो कहाँ से आएगा? मासूम अरुणिमा शारदा जी की इस बात को समझ नहीं सकी, उसे लगा शायद उसकी माँ पैसों की कमी के कारण उसे ऐसा कह रही है। अरुणिमा ने जल्दी से अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, तुम खर्च की फिक्र मत करो, मैं कोई काम कर लूंगी, मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए मैं वो कर लूंगी, और अगर मुझे कुछ नहीं भी मिलता है तो मैं लोगों के घरों में काम करके हमारा खर्चा निकाल लूंगी, लेकिन आप मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, वो इंसान इंसान नहीं है, राक्षस है। शारदा जी परेशान हो गई थी, वो किन शब्दों में अरुणिमा को समझाती कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, और फिर उन्होंने वही किया जो कि हर माँ अपनी बेटी का घर बचाने के लिए दुनियादारी का सिखाया ज्ञान देती है, जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला जी रहा है या मार रहा है, बस समाज में उनका नाम बना रहना चाहिए, शारदा जी ने कहा। अरुणिमा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम अपने पति के घर में हो, अगर तुम इस तरीके से अपने पति का घर छोड़ दोगी तो ये समाज और ये लोग क्या कहेंगे, और जरा सोचो मैं समाज में उठने बैठने लायक रहूंगी क्या, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन लोग मेरा जीना हराम कर देंगे, ये बोलकर कि मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकी। और तुम कैसे इतनी स्वार्थी हो गई हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मिश्री के बारे में नहीं सोच रही हो। मिश्री भी तो बड़ी हो रही है, कल को उसके लिए जब मैं रिश्ते ढूंढने जाऊंगी तो क्या कहेंगी कि एक बेटी घर पर बैठी हुई है और मैं दूसरी का घर बसाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसी लड़की लेकर जाएगा जिसकी बहन छोड़ी हुई है? तुम लोगों को कितना भी कह दो कि तुम अपने पति को छोड़कर आई हो, लेकिन सारी दुनिया तुम्हें पति की छोड़ी हुई कहेंगी। आदमी पर कोई इल्जाम नहीं लगता है, सब औरतों की ही गलती निकालते हैं। सब लोग मेरा और मिश्री का इस समाज में रहना दूभर कर देंगे, मिश्री का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और बहन ऐसी जिंदगी जिए? अरुणिमा बहुत भोली थी, अपनी माँ के इस बहकावे में आ गई कि अगर वो अपने पति का घर छोड़कर जाएगी तो इसका हर्जाना उसके परिवार को मिलेगा। अरुणिमा ने जल्दी से अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, नहीं माँ, मैं तुम पर उंगली नहीं उठते देख सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।